તારીખ 2/7/1995 શ્રીમદ રાજચંદ્ર પત્રાંક 530 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 494
પત્ર ગાંધીજી કે પ્રતિ લિખા ગયા હૈ આજ જો અપને રાષ્ટ્રપિતા બોલને મેં આતે હૈ હિન્દુસ્તાન કો આઝાદી કી લડત મેં જો સફલ હુએ હિન્દુસ્તાન આઝાદ હુઆ સ્વતંત્ર હુઆ વો ગાંધીજી ઉસ વક્ત ડર્બન થે ડર્બન મેને સાઉથ આફ્રિકા તો इस जमाने में बैरिस्टर होके लंदन से आए थे। उस जमाने में तो सौराष्ट्र के लोग बम्बई जाए तो बड़ी बात थी, तो यहाँ से बम्बई जाए तो उनको श्रीफल देवे वो करे विधि करे सब कहाँ जा रहा है कि बम्बई जा रहा है, बहुत बड़ी बात लंबी सफर गिनने में आती थी। उस जमाने में वो लंदन गए थे पढ़ाई के लिए और बैरिस्टर होके बम्बई आए थे। बम्बई में उनकी वकालत चली नहीं, क्या हुआ, बुद्धिमान थे, बहुत बुद्धिमान थे, फिर भी वो तो प्रारब्धाधीन होता है, उनकी वकालत चली नहीं बम्बई में। फिर साउथ अफ्रीका में लीगल एडवाइजर की कोई सर्विस एक अच्छी कंपनी में मिल गई उनको, वो नौकरी करने के लिए साउथ अफ्रीका गए थे। वकालत तो चलते नहीं थे, तो कानूनी सलाह देने के लिए किसी कंपनी में वो गए, तो वहाँ साउथ अफ्रीका में ये ब्रिटिशरों के सामने ये जो अफसी लोग हैं, काले लोग हैं, उनकी आज़ादी की लड़त चली, उसमें वो शामिल हो गए। वहाँ ऐसा बोला जाता है कि काला गोरा की लड़ाई है ये, अब से लोग काले बहुत होते हैं, वो गोरे बहुत होते हैं, और ब्रिटिश सल्तनत बहुत बड़ी थी इस विश्व में। ऐसा बोला जाता था कि ब्रिटिश सल्तनत में सूर्यास्त नहीं होता है, जहाँ सूर्य उदय होता है वहाँ ब्रिटिश सल्तनत ब्रिटिशों का राज्य होता ही है। हिंदू विश्व में कहीं भी जाओ, क्योंकि आधा जगह रात होती है आधा जगह दिन होता है, लेकिन दोनों जगह ब्रिटिशों का राज था, इसलिए वहाँ सूर्यास्त नहीं होता है ऐसा बोला जाता था। और वो लोग राजनीति में भी बहुत निपुण थे, हिंदुस्तान में आए थे व्यापार करने के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से आए थे और सारा हिंदुस्तान पर कब्जा कर लिया धीरे धीरे। उन लोगों को हराना एक बहुत कठिन बात थी, लेकिन गांधी जी ने अहिंसात्मक लड़ाई खेली। लड़ाई ऐसे कोई लड़ाई शस्त्र अस्त्र से नहीं, अहिंसा कानून तोड़ना, अहिंसा से तो कानून तोड़ना। तो वहाँ अफ्रीका में क्या हुआ कि ये वो घबराए कि ये आदमी भारी पड़ गया अपने को। उन लोगों ने गांधी जी की जो मानसिक परिस्थिति है उनका अभ्यास किया, साइकोलॉजी का स्टडी किया कि किस प्रकार के क्या दिमाग वाला ये आदमी है। तो उन्होंने ये देखा कि आदर्शवादी तो है ही, अहिंसा से लड़ाई लड़ता है तो उसका जो आदर्श है वो तो है ही, तो आइडियोलॉजी तो उसने देख ली, तो बट आइडियोलॉजिकल साइकोलॉजी है इसकी। अब क्या वो देखना चाहते थे कि उसकी कमजोरियां क्या है, क्योंकि आदमी फंसता है तो कमजोरी से फंसता है। तो देखा कि मानप्रियता तो है, पर वो तो सामान्यतया हर मनुष्य में होती है। तो उन लोगों को जो पादरी लोग थे उन्होंने एक मीटिंग किया और उसकी बहुत प्रशंसा किया और मन वाले की प्रशंसा करे तो क्या हो जाए, उसका तो खरीदी हो जाए। आप तो बहुत महान संत पुरुष जैसे आदमी है, महात्मा लोग है, ऐसा दिखता है। राजकारण में अपना आपका कोई काम नहीं है, ये तो बहुत गंदी रमत है। आपको तो धर्म में झुकाना चाहिए, आपका तो धार्मिक क्षेत्र होना चाहिए। ये राजनीति वाला क्षेत्र आपके लायक नहीं है, और वाकई आप कोई महात्मा ही है। अभी तो संसार में सब लड़त लड़ते हैं, दारूगुला से लड़ता है, बंदूक से लड़ते हैं, आप बिना हथियार लड़ते हो, ये तो संतों का ही काम होता है। तो हमारी आपसे एक विनती है, नम्र विनती है, कि अगर आप पादरी हो जाए, हमारे क्रिश्चियन धर्म को अंगीकार करें, तो आगे जाकर के आप पोप के स्थान में आ सकते हैं। कैसे? पोप में सारे क्रिश्चियन धर्म का धर्म गुरु, करोड़ों लोग इनके शिष्य होते हैं, इनके समाज में करोड़ों लोग हैं, सारे विश्व में फैले हुए हैं। तो आपको पोप बनाया जाएगा, ऐसी योग्यता आप में है, लेकिन पहले आप पादरी बन जाओ। और हमारा धर्म बहुत सुंदर है, बहुत तो अच्छी अच्छी, देखो बाइबल में कैसी कैसी बातें लिखी है। गांधी जी भीगे भगे हो गए, उनका दिल भी पिघल गया, क्या करें, तो थोड़ा असमंजस में आ गया, क्या करें। क्रिश्चियन धर्म अंगीकार करना है कि नहीं करना, हिंदू धर्म छोड़ना है कि नहीं छोड़ना, विधा में आगे उस सिलसिले में उनको कृपा गुरुदेव की याद आई कि अपने देश में मेरे कोई संबंध हुआ है, परिचय हुआ है ऐसा। रायचंद भाई कवि रायचंद भाई, वो कवि कहते थे उनको, वो बहुत दिमाग वाला आदमी है और इस विषय में उनकी बहुत पैनी नजर है। इनकी सलाह सूचना आपने को लेना चाहिए। उन्होंने पत्र व्यवहार किया था और उसी पत्र व्यवहार के कारण से वो क्रिश्चियन बनने से बच गए। गांधी जी क्रिश्चियन नहीं बने, ये उपकार कृपालु देवता है, वो बच गए, वरना वो कभी के क्रिश्चियन बन जाते। इतने वो चक्कर में, पादरियों के चक्कर में आ गए थे। तो उस वक्त उनको बहुत मंथन चला है, और उस मंथन के दौरान उन्होंने बहुत से प्रश्न कृपालु देव को पूछे हैं। ऐसे तो ये 27 प्रश्न है, लेकिन एक प्रश्न में भी एक से ज्यादा प्रश्न रखे हैं, करीब 35-40 प्रश्न है उनके, और बहुत विशालता से उन्होंने ये धर्म को समझने का प्रयास किया है। गहराई और विशालता दोनों विषय को उन्होंने स्पर्श किया है अपने जिज्ञासा में, प्रश्न में। तो ये गांधी जी की पूर्व भूमिका है इस पत्र के पीछे। आत्मार्थी गुण ग्राही सत्संग योग्य भाई श्री मोहनलाल के प्रति, गांधी जी का नाम था मोहनलाल करमचंद गांधी। तो अभी तो कोई नाम से नहीं बोलते, बहुमान से गांधी जी करते हैं, उनको नाम से पत्र लिखा है। डरबन, श्री बंबई से लिखित जीवन मुक्त दशा के इच्छुक रायचंद का आत्मसंतुष्टि पूर्वक यथा योग्य प्राप्त हो। जीवन मुक्त दशा के इच्छुक हूं मैं, जीवन में मुझे कहीं भी बंधन नहीं रहे, ऐसी मेरी अभिलाषा है। और मेरे आत्मस्वरूप की स्मृति पूर्वक ये पत्र का प्रारंभ करता हूं। यहां कुशलता है, जिस महापुरुष की वो सलाह लेते थे, गांधी जी के अनुयायियों ने कभी ध्यान नहीं दिया है कि गांधी जी के आदर्श हम स्वीकार करते हैं, लेकिन गांधी जी जिसको स्वीकार करते हैं, इनका स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हैं। विचक्षणता हो, बुद्धिमानी हो तो वहां तक ध्यान जाना चाहिए कि ये महात्मा बने, लेकिन ये महात्मा भी कोई किसी महात्मा के शिष्य थे, उन्होंने लिखा है कि मेरे गुरु के स्थान में है, तो इनके गुरु की महत्ता कितनी, इस बात पर किसी का ध्यान नहीं गया। जाना चाहिए था लेकिन नहीं गया। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा में उल्लेख किया है इस बात का, मेरे जीवन पर तीन महात्माओं की बहुत गहरी छाप है, महात्मा टॉल्स्टॉय, महात्मा रस्किन और कवि रायचंद भाई, ऐसा करते हैं। तो ये दोनों तो प्रदेश में थे, ये स्वदेश में थे, प्रत्यक्ष थे, और उनको बहुत, जब जब वो उलझन में आए हैं उनको स्पष्टीकरण देकर के उलझन में से निकाले हैं। यहाँ कुशलता है, आपका लिखा हुआ एक पत्र मुझे मिला है, कई कारणों से उसका उत्तर लिखने में ढील हुई थी, पत्र का उत्तर देने में विलंब हुआ था, इसमें बहुत से कारण थे। बाद में आप इस तरफ तुरंत आने वाले हैं, आप भारत में लौटने वाले हैं, ऐसा जानने में आने से पत्र नहीं लिखा था, कि चलो रूबरू में ही बात करेंगे, परंतु अभी ऐसा जानने में आया है कि स्थानीय कारण से अभी यह लगभग एक वर्ष तक ठहरने का है, मैंने डरबन का जो स्थानीय कारण है के कारण से आप एक साल तो वहीं रुकेंगे, एक साल तक तो भारत में आएंगे नहीं। जिससे मैंने ये पत्र लिखा है, तो इस कारण से मैंने देखा कि अभी रूबरू को मुलाकात फिलहाल होने वाली नहीं है, तो पत्र से उसका उत्तर पत्रोत्तर दिया जाए। आपके लिखे हुए पत्र में जो आत्मा आदि के विषय में प्रश्न है और जिन प्रश्नों के उत्तर जानने के आपके चित्त में विशेष आतुरता है, ये प्रश्न के उत्तर जानने में आतुरता है, उन दोनों के प्रति मेरा सहज सहज अनुमोदन है। देखो, किसी को भी परमार्थ विषय जिज्ञासा होती है तो ज्ञानी को उसको अच्छी तरह रिस्पॉन्स देने का भाव आता है, ये बहुत स्वाभाविक है। सहज सहज अनुमोदना है कि अच्छा हुआ ऐसे जिज्ञासा भरे प्रश्न उठे, तो बहुत अच्छी बात है, तो उन्होंने उत्तर देने का कष्ट किया। उन दोनों के प्रति मेरा सहज सहज अनुमोदन है, परंतु जिस समय आपका वह पत्र मुझे मिला उस समय उसका उत्तर लिखा जा सके ऐसी मेरे चित्त की स्थिति नहीं थी, मैं भी अपने काम में लगा हुआ हूँ, मैं भी अपने पुरुषार्थ में लगा हुआ हूँ और उतना संलग्न हूँ कि कभी कभी आए हुए पत्र का उत्तर देना ऐसा व्यवस्थित चित्त मेरा नहीं रहता कि मैं उत्तर दे सकूं, इतना मैं व्यस्त रहता हूं अपने अंदर में, और प्रायः वैसे होने का कारण भी यह था कि उस प्रसंग में बाह्य उपाधि संबंधी वैराग्य विशेष परिणाम को प्राप्त हुआ था और चित्त की स्थिति अव्यवस्थित होने का कारण बहुभाग ऐसा था कि जो बाह्य उपाधि है व्यवसाय आदि की उसके प्रति मुझे बहुत वैराग्य आया था, कि कोई बाह्य प्रवृत्ति में जाने का मन होता नहीं था, बहुत निरस्ता आ गई थी, और वैसा होने से उस पत्र का उत्तर लिखने जैसे कार्य में भी प्रवृत्ति हो सकना संभव नहीं था। बाह्य प्रवृत्ति करने का विकल्प ही आगे नहीं चलता था। तो ये लंबा चौड़ा पत्र का प्रश्नों का उत्तर देना, उतने भी चित्त में बाह्य प्रवृत्ति होना शक्य नहीं थे, हो नहीं सकता था, मेरे से वो हो सकना संभव नहीं था। थोड़ा समय जाने देकर कुछ वैसे वैराग्य में से भी अवकाश लेकर आपके पत्र का उत्तर लिखूंगा ऐसा सोचा था। अभी नहीं, थोड़ा समय जाने से कुछ वैराग्य के परिणाम, निरस्ता के परिणाम में से थोड़ा अवकाश मिल जाएगा, जगह हो जाएगी विकल्प चलने के, तो उत्तर लिखूंगा ऐसा सोचा था। परंतु बाद में वैसा होना भी अशक्य हो गया। ये वैराग्य इतना लंबा है कि आपको उत्तर लिखना अशक्य हो गया मेरे से। देखो क्या अंदर की दशा है, आपके पत्र की पहुंच भी मैंने लिखी न थी, और इस कारण से मैंने पत्र की पहुंच भी नहीं लिखी थी। क्या आपका पत्र मिला है बाद में मैं उत्तर लिखूंगा ऐसा पहुंच भी नहीं दिया मैंने। और इस प्रकार उत्तर लिख भेजने में ढील हुई है, विलंब हुआ है, इसका कारण इस प्रकार से है। इससे मेरे मन में भी खेद हुआ था कि आपकी जिज्ञासा को मैंने समय से उत्तर नहीं दिया और आपको संतुष्ट नहीं किया, वो भी मुझे खेद हुआ। और जिसका अमुक भाव तो अभी तक रहा करता है, और इस खेद का कुछ अंश है वो अभी भी चालू है कि आपको आपकी जिज्ञासा संतुष्ट हुए ऐसा उत्तर लिखना चाहिए था, लेकिन बहुत देर हुई है उसमें, तो उनको थोड़ा फील होता है ऐसा नहीं होना चाहिए था। जिस प्रसंग में विशेष करके खेद हुआ, उस प्रसंग में ऐसा सुनने में आया कि आप तुरंत इस देश में आने का विचार रखते हैं। जिस प्रसंग में विशेष खेद आया और उत्तर लिखने का भाव आया, तो ये समाचार मिला कि आप तो इधर आ रहे हैं, जिससे चित्त में कुछ ऐसा आया कि आपको उत्तर लिखने में देर हुई है। अच्छा हुआ, चलो देर हुई है वो भी अच्छा हुआ, परंतु आपका समागम होने से वो उल्टी लाभकारक होगी, वो देर तो लाभकारक हो जाएगी, क्योंकि प्रत्यक्ष परिचय में वो उत्तर देंगे, तो देर हुए वो भी अच्छा हुआ, चलो ऐसा एक समाधान भी आया खेद के सामने। क्योंकि लेख द्वारा बहुत से उत्तर समझाना विकट था, आपके प्रश्न में लिखने से जो समझाना है वो थोड़ा विकट है, और बोलने में समझाना थोड़ा आसान है, पर आपको तुरंत पत्र न मिल सकने से आपके चित्त में जो आतुरता वर्धमान हुई है, वह समागम में उत्तर तुरंत ही समझ सकने के लिए एक सुंदर कारण मानने योग्य था। क्या न्याय लिखा है कि आपकी योग्यता ऐसी है कि आपको तुरंत आपके जिज्ञासा का उत्तर नहीं लिखेंगे तो आपकी आतुरता बढ़ जाएगी और जिज्ञासा तीव्र हो जाएगी, तो वो परिस्थिति उत्तर ग्रहण करने के लिए बहुत अच्छी बढ़िया परिस्थिति है। ऐसा भी सोचा था कि चलो देर हुई है तो वो भी इसके लाभ का कारण है। दो प्रकार से लाभ का कारण सोचा, एक तो प्रत्यक्षता में उत्तर देने का होगा, दूसरा देर हुई है तो जिज्ञासा भी तीव्र होगी। तो देखिए, योग्यता के दो प्रकार होते हैं। जिस योग्यता में जिज्ञासा से प्रश्न उठता है, उसमें कभी किसी को उसी वक्त उत्तर मिलता है तो बहुत फायदामंद भी होता है, और उसी वक्त उत्तर नहीं मिलता है तो उसकी जिज्ञासा तीव्र नहीं होकर के मंद भी हो जाती है। तो उसको तो तुरंत उत्तर मिले वही अच्छा है। जब किसी की जिज्ञासा ऐसी होती है कि उत्तर में देरी लगता है तो और जिज्ञासा तीव्र हो जाती है, उनके लिए बाद में देरी से उत्तर मिले वो फायदेमंद रहता है। इसलिए ऐसा एकांत नहीं है कि जिज्ञासा उठे तो कब उत्तर देना, बाद में देना या तुरंत देना, तो जैसे जिसकी योग्यता है उसी अनुसार ज्ञानी उसको ट्रीटमेंट देते हैं। किसी को तुरंत भी उत्तर देते हैं, किसी को देरी से भी उत्तर देते हैं। अगले की योग्यता नाप करके वो विचक्षणता से समाधान करते हैं। उनको तुरंत उत्तर दिया था, हाँ वो उसको लंबाया पीछे वाले, उसमें तो उसका कोई जिज्ञासा के भागने वाली बात नहीं थी, जो बाद में प्रसंग हुआ हो तो उनके प्रत्यक्ष दर्शन की बात थी। मुझे आपका प्रत्यक्ष दर्शन मैं चाहता हूँ, और मेरी बीमारी के कारण से और शारीरिक अशक्ति के कारण से मैं आपके पास नहीं आ सकता हूँ, तो आप मेरे वहाँ करा लो। तो उसमें उन्होंने बहुत खींचा था, वो भी विचक्षणता से काम लिया है। तो जितने उसकी भावना तीव्र होगी दर्शन की, उतनी उसको निर्मलता आएगी। वियोग का ताप निर्मलता को ले आता है। क्या है? जिसको, जिस मुमुक्षु को ज्ञानी पुरुष के प्रति प्रेम होता है, वो इनका सानिध्य चाहता है। प्रेम क्या चाहता है? सानिध्य चाहता है। और प्रारब्ध योग से सानिध्य नहीं भी मिलता है, क्षेत्र की दूरी रहती है, दूर रहना पड़ता है नहीं चाहते हुए भी, उनको विरह का वियोग, वियोग का विरह जो है उसकी वेदना उत्पन्न होती है, और वो वेदना निर्मलता को ले आती है। तो प्रत्यक्ष योग में भी निर्मलता आती है और वियोग में भी निर्मलता आती है। योग्यता भी ऐसी है कि इस योग्यता से संयोग हो या वियोग हो, निर्मलता ही बढ़ेगी और प्रेम बढ़ेगा, ये बनता है। प्रयोजन की पकड़ ज्यादा होती है, और प्रयोजन क्या, उनको तो ज्ञानी ही चाहिए और ज्ञानी मिल नहीं रहे हैं, तो बहुत तीव्र वेदना में वो आए थे, तो सम्यक दर्शन पाने के योग्य भूमिका में आ गए, विज्ञान की भूमिका में आ गए। ऐसा खींचा था, खींचा था मतलब वो आता हूं करके आते नहीं थे, तो उनकी जो वेदना है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जाते थे। यहां भी ऐसा ही लिखा है कि आपको तुरंत पत्र न मिल सकने से आपके चित्त में जो आतुरता वर्धमान हुई, वह तो समागम में उत्तर तुरंत ही समझ सकने के लिए एक सुंदर कारण मानने योग्य था। क्या प्रश्न के उत्तर की आतुरता वर्धमान होने से उत्तर समझने के लिए बहुत अच्छी परिस्थिति पैदा करता है। जिज्ञासा ज्ञान प्राप्ति के लिए बहुत अच्छी भूमिका है। क्यों? क्योंकि जिज्ञासा के काल में जो भी उत्तर आएगा उसको अपने विचार की भूमिका में उस उत्तर को रखने का अवकाश प्राप्त होता है, खाली जगह हो जाती है, जो मुमुक्षु को हमेशा हमेशा रखनी चाहिए। इसलिए मुमुक्षु की जिज्ञासा को हमेशा हमेशा ज्ञानी अवतार को देते हैं या अनुमोदन करते हैं। कई लोग पूछते हैं कि प्रश्न करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, स्वाध्याय के दरमियान प्रश्न करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बराबर करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, होना ऐसा नहीं होना चाहिए, बराबर करना चाहिए। 100 प्रश्न नहीं, 100 की जगह 125 प्रश्न करो, लेकिन प्रयोजन भूत, ये हमारे शर्त। बिना प्रयोजन प्रश्न करना तो अपना दिमाग खराब करने की बात है, ऐसा होना चाहिए
नहीं।
हाँ, दूसरे के लिए भी नहीं करना, अपने लिए ही करना, और प्रयोजन भूत प्रश्न करना, अप्रयोजन भूत
नहीं करना
चाहिए। तर्क वितर्क फालतू का लगाना नहीं चाहिए। अब प्रारब्ध उद्देश्य है, जब समागम हो तब कुछ भी वैसे ज्ञान वार्ता होने का प्रसंग आए, ऐसी आकांक्षा रख करके संक्षेप में आपके प्रश्नों का उत्तर लिखता हूं। क्या बात लिखा कि प्रारब्ध उद्देश्य समागम हो तब विशेष ज्ञान वार्ता होने की मेरी अपेक्षा है, तो रखता हूं मैं, तो अपेक्षा रख करके उत्तर लिखता हूं। ऐसा नहीं है कि उत्तर लिखता हूं तो अभी रूबरू में चर्चा करने की जरूरत नहीं रहेगी, ऐसा नहीं लिखा। प्रत्यक्ष समागम करना, उसमें आ गया कि प्रत्यक्ष समागम करने का सूचना गर्भित रूप से रखी है इधर, और मुमुक्षु को तो ये सूचना नहीं समझनी चाहिए, ये आज्ञा समझनी चाहिए। जिस प्रश्नों का उत्तरों का विचार करने के लिए निरंतर तत्संबंधी विचार रूप अभ्यास की आवश्यकता है, उत्तर तो मैं संक्षेप में लिखता हूं, लेकिन उसका उत्तरों को उत्तर को विशेष रूप विचारने के लिए उस संबंधी विचार बहुत चलने चाहिए, और ये आवश्यक है कि उसी विषय में आपकी विचारधारा विशेष होनी चाहिए। वे उत्तर संक्षेप में लिखे गए हैं, उत्तर तो सब संक्षेप में लिखे गए हैं, जिससे कुछ एक संदेहों की निवृत्ति होना शायद मुश्किल होगा। आपकी योग्यता देखकर के ऐसा लगता है कि कुछ शंकाएं रह जाएगी, पूरा पूरा शायद समाधान नहीं हो पाएगा, ऐसा हमको लगता है। आज गांधी जी को हमारे देश के जो लोग हैं, जनता है, तो विशेष बुद्धिमान, तो विशेष बुद्धिमान थे ऐसे स्वीकार करते हैं। थे भी बुद्धिमान नहीं थे, वो बात नहीं थी, लेकिन वो जो लोग स्वीकारते हैं, वो तो आजादी हासिल हुई, स्वतंत्रता प्राप्त हो गई, और उसमें उसका निमित्त हुआ, इसलिए ज्यादा बुद्धिमान मानते हैं, दूसरा कोई कारण नहीं। हाँ, उसको महात्मा ही कहते हैं, परंतु वो बात सच नहीं है कि उनकी बुद्धि के कारण से स्वतंत्रता मिली है, वो बात सच नहीं है। बुद्धिमानी जरूर थी, बुद्धिमान थे भी, फिर भी इनके कारण से स्वतंत्रता मिली है, वो बात नहीं है। लोगों का प्रारब्ध इस प्रकार का था, और वो निमित्त पड़ गए उतने से पास, बाकी और कोई बात में दम नहीं है। साथ किया है, लेकिन अगर लोगों ने साथ नहीं दिया होता तो वो ऐसा मुन नहीं किया था, विदा नहीं किया था, ऐसा बोला था कि जो परका करता अर्था होता है वो मुंड होता है। मैं देश का कार्य कर सकता हूँ, मैं समाज का सुधार कर सकता हूँ, ऐसे दूसरे के परिणाम की कर्ता बुद्धि जिसको होती है उसको यहाँ भगवान मुंड कहते हैं। मैं मुंड कहता हूँ ऐसा नहीं है, भगवान उसको मुंड कहते हैं। तो समझ गए कि मैं ऐसे मान्यता तो मेरी है ही, मेरी तरह से मान्यता है इसलिए मुझे ही मुंड कहते हैं। लोग उनकी प्रशंसा करते थे जबकि गुरुदेव उसको मुंड समझते थे। तो उनको वाकई कोई साधारण आदमी नहीं है, मुझे मुंड कहने वाला कोई साधारण नहीं है। और वैसे गुणग्राही वृत्ति थी जो कृपा गुरुदेव ने संबोधन किया, गुणग्राही गुण का ग्रहण करने का वृत्ति गांधी जी में अवश्य थी। उसे का कोई अच्छा गुण लगे तो वो ग्रहण कर लेते थे। तो इस तरह से गुरुदेव ने जो बोला उसका बुरा नहीं माना, वरना तो दुख लग जाए, अरे मैं ऐसा बड़ा आदमी मुझे मुंड कहते हैं, ऐसा लग जाए, ऐसा नहीं लिया उन्होंने। गुण ग्राही थे, सोचा तो कोई मेरे हित की बात करते हैं, महापुरुष है, महात्मा जी है, मेरे से भी आगे हैं, तो कोई बात मेरे हित की अवश्य कर रहे हैं। ऐसे सीधा लिया था, सरलता से सीधा लिया। हाँ, प्रयोजन के पकड़ो उसको आता है, लेकिन उसकी डिग्री कितनी वो सवाल है। गांधी जी गुणग्राही थे लेकिन राजनीति की मुख्यता छोड़ करके नहीं, इसलिए उन्होंने राज का क्षेत्र नहीं छोड़ा, समाज का क्षेत्र नहीं छोड़ा। उनका अधिक वजन क्या था, समाज पर था, आत्मा पर नहीं था। फिर भी ज्ञानी तो ऐसा करते हैं कि ऐसे जीव को भी इनकी आत्मकल्याण की वृत्ति तीव्र हो तो अच्छी बात है, ऐसा प्रयास करते हैं। फिर अगले की जैसी होती है। वे उत्तर संक्षेप में लिखे गए हैं जिससे कुछ एक संदेहों की निवृत्ति होना शायद मुश्किल होगा, पूरा पूरा समाधान शायद नहीं भी होगा, ऐसा समझ करके मैं उत्तर लिखता हूं। तो भी मेरे चित्त में ऐसा रहता है कि मेरे वचन के प्रति कुछ भी विशेष विश्वास है क्या? गांधी जी को विश्वास था तो वो कहेंगे तो विश्वास करने लायक बात होगी, अविश्वास करने लायक नहीं होगी। देखो उतना तो था ही जब प्रश्न लिखे हैं, जिसको ज्ञानी के वचनों में विश्वास नहीं हो उनको तो कभी उपदेश करता नहीं है, उसको उपदेश का कोई लाभ होने वाला नहीं है। जिसको विश्वास है उसको अवश्य लाभ थोड़ा बहुत हो सकता है। क्या लिखा कि मेरे चित्त में ऐसा रहता है कि मेरे वचन के प्रति कुछ भी विशेष विश्वास है आपको, और इससे आपको धैर्य रहेगा, आप धीरज धरेंगे। भले ही मेरा उत्तर देरी से आया है लेकिन आप धीरज से उसके आतुरता से राह देखेंगे, मैंने प्रतीक्षा करेंगे। और प्रश्नों का यथायोग्य समाधान होने के लिए अनुक्रम से कारणभूत होगा ऐसा मुझे लगता है। वो जो धैर्य है वो धैर्य के कारण से यथार्थ समाधान भी आपको होगा और यथायोग्य समाधान होने के लिए वो कारणभूत होगा, आपका धैर्य है वो कारणभूत होगा ऐसा मुझे लगता है। आपके पत्र में 27 प्रश्न है, कितने हैं? 27 प्रश्न है एक पत्र में, उनके उत्तर संक्षेप में नीचे लिखता हूँ। 27 का उत्तर लिखा है उसमें। पहले प्रश्न में 3 प्रश्न है, एक नहीं है परंतु
3
है, तो ये 27 + 2 = 29 हो गया। शुरू से ही 29 प्रश्न हो गया। पहला प्रश्न है, आत्मा क्या है? यह कुछ करता है पर उसे कर्म दुख देने देते हैं या नहीं? गुजराती में आत्मा शू है, तो ते कहीं करे छे, कुछ करता है ते कहीं करे छे, पर उसे कर्म दुख देते हैं या नहीं? क्या कर्म उसको नड़े छे? गुजराती में शू शब्द है दुख देवाने वात, क्या शब्द से मिली विघ्न? नड़े मैंने विघ्न करे छे के नहीं? किसमें? सुख में विघ्न करना, उसको कहते हैं कि दुख देते हैं के नहीं? डायरेक्ट अर्थ नहीं लिया है, डायरेक्ट अनुवाद नहीं लिया है, इनडायरेक्ट किया है। डायरेक्ट में ऐसा आना चाहिए कि उसको कर्म विघ्न रूप होते हैं कि नहीं होते हैं, ऐसा लेना चाहिए। सुख दुख की बात बाद में है, लेकिन कर्म उसके विघ्न रूप होते हैं या नहीं होते हैं, उतना तो सीधा ट्रांसलेशन है उतना। फिर तो भी कितना भी अनुवाद करे लेकिन फर्क तो हो सकता है, कहीं ना कहीं फर्क आ जाए। ये पहले प्रश्न में एक प्रश्न नहीं है लेकिन 3 प्रश्न है, 2 प्रश्न अधिक है उसमें, इसका उत्तर देते हैं। उत्तर में 3 विभाग दिया है, 1, 2 और 3, ऐसा पैराग्राफ किया है। जैसे घटपट आदि जड़ वस्तुएं हैं, दृष्टांत, आत्मा क्या है? क्योंकि आत्मा एक पदार्थ है। कैसे पदार्थ है? कि जैसे घटपट आदि पदार्थ है वैसा वस्तु पदार्थ है। फर्क उतना है कि वो संयोग सिद्ध पदार्थ है, वो असंयोगी तत्व है। वो कहेंगे तो उत्तर में समझाएंगे। जैसे घट पट, घट मैंने घड़ा, पट मैंने वस्त्र, जैसे घड़ा भी एक चीज है, वस्त्र भी एक पदार्थ है, वस्तु है, जड़ वस्तु है, तो दोनों जड़ है दृष्टांत में। वैसे आत्मा ज्ञान स्वरूप वस्तु है। कैसा है आत्मा? ज्ञान स्वरूप वस्तु है। आत्मा वस्तु है ऐसा नहीं कहा, आत्मा ज्ञान स्वरूप वस्तु है। और भी तो गुण तो है लेकिन ज्ञान से पहचाना जाता है, और पहचानने में भी ज्ञान का उपयोग है, और है भी ज्ञान स्वरूप, इसलिए आत्मा को ज्ञान स्वरूप आत्मा कहने में आता है। देखिए चर्चा धर्म की है, चर्चा धर्म की है, और उत्तर वैज्ञानिक है। क्या है? उत्तर साइंटिफिक है, धार्मिक उत्तर नहीं दिया है, विज्ञान के दृष्टिकोण से उत्तर दिया है। सारा समय सार है ना, वो भी वस्तु का विज्ञान को निरूपित करता है समय सार। ऐसे धार्मिक ग्रंथ है लेकिन साइंटिस्टों की दृष्टि में वो वैज्ञानिक ग्रंथ लगेगा, पदार्थ विज्ञान, ऐसी बात है। आत्मा ज्ञान स्वरूप वस्तु है, क्या फर्क है? और दोनों में फर्क क्या है? कि घटपटा भी अनित्य है, कभी गड़ा है कभी गड़ा नाश हो जाता है, वस्त्र है वस्त्र का भी नाश हो जाता है, तो अनित्य है। पट मैंने जमीन नहीं, पट मैंने वस्त्र, पटे नया वस्त्र लेना है, पट में वस्त्र लेना है, घटपट घड़ा और वस्त्र दृष्टांत रूप से वस्तु है ना, घड़ा भी एक वस्तु है, वस्त्र भी एक वस्तु है, तो पट में वस्त्र है शब्दांतर शब्द का भी है आत्मसिद्धि में जो देखो ना घटपट आदि जान तू तेथी तेने मान, जानदार ने मान नहीं कहिए कि वो तो क्या अर्थ करो अंबाला भाई એને પટ કહેવાય, પણ એ તો પટ એટલે પોળાય, એ પટ એટલે પોળાય, ત્યાં પટ શબ્દ નો અર્થ બીજો થાય, પોળાય એવો થાય છે. આનો પટ કેટલો છે? ઓકે, 1 કિલોમીટર જેટલો છે, 1 માઇલ જેટલો છે. હે, એમ જ પટ જ લખ્યા છે, પટ એટલે વસ્તુ થાય. હે, હા, વસ્ત્ર નો હોય છે. ઘટપટ આદિ અનિત્ય હૈ, વે એક સ્વરૂપ સે સ્થિતિ કરકે ત્રિકાળ નહીં રહે સકતે. ક્યાં ઉત્તર દિયા? પરમાણુ કી અવસ્થા બદલેગી, ઘડા કા નાશ હોગા, પરમાણુ કા નહીં હોગા, એસા કહેતે હૈ વૈજ્ઞાનિક ઉત્તર હે. એક રૂપ સે સ્થિતિ કરકે ત્રિકાળ નહીં રહે સકતે, પરમાણુ હૈ વો ઉસકી સ્થિતિ બદલતી હૈ, તો હમ કહેંગે કે ઘડા કા નાશ હો ગયા. ઘડા કે ઘડા કા નાશ હો ગયા મતલબ ઘડા રૂપ અવસ્થા કા નાશ હુઆ, પરમાણુ કા નાશ નહીં હુઆ, ઉસકી સ્થિતિ બદલ ગઈ, દૂસરા પરમાણુ હો ગયા, યાની મિટ્ટી હો ગઈ ઉસકી, ઇસલિયે વો પરમાણુ ત્રિકાળ એક રૂપ સે સ્થિતિ નહીં કર સક નહીં રહે સકતે. આત્મા એક સ્વરૂપ સે સ્થિતિ કરકે ત્રિકાળ રહે સકતા હૈ, એસા નિત્ય પદાર્થ હૈ. આત્મા એક સ્વરૂપ સે સ્થિતિ કરકે ત્રિકાળ રહે સકતા હૈ, અગર એસી અવસ્થા બનાઈ જાય તો જૈસે સિદ્ધ અવસ્થા હૈ તો હંમેશા સિદ્ધ રૂપી રહેંગે, લેકિન જીસકો વો પતા નહીં હૈ ઉસકો યહાં સંદેહ રહેગા કે આત્મા કી સ્થિતિ એક સી કહાં રહેતી હૈ. તો દેહ કો જો આત્મા માનતે હૈ ઉનકો ક્યા લગતા હૈ કે આત્મા કી એક સી સ્થિતિ નહીં હૈ, કભી આત્મા બાલ હૈ, કભી યુવાન હૈ, કભી વૃદ્ધ હૈ, એક સી સ્થિતિ કહાં રહેતી હૈ. લેકિન યે બાલ યુવાન વૃદ્ધ દેહ કી સ્થિતિ હૈ, આત્મા કી નહીં હૈ. પર મૂળ સ્વરૂપ સે આત્મા એક રૂપ સ્થિતિ મેં હૈ, ઓર અવસ્થા મેં અગર જૈસા સ્વરૂપ હૈ એસા શ્રદ્ધા જ્ઞાન આચાર્યત્વ મેં સ્વીકાર કરકે અગર એસી દશા સિદ્ધ દશા બના લેતે તો હંમેશા ત્રિકાળ વૈસે રહે સકતે હૈ, તો ત્રિકાળ એસા રહે સકતે હૈ, ઉસમે કોઈ બાધા નહીં હૈ. હા, ઘણા છે, એક શબ્દ ના ઘણા અર્થ થાય. હા, તો અંદર નો પડદો એ પટ એટલે પડદો થાય છે, ત્યાં પડદો સામાન્ય રીતે વસ્ત્ર નો હોય ને, એટલે વસ્ત્ર એવો અર્થ થાય છે. પટ એટલે પડદો, સીધો અર્થ પડદો થાય છે. વૈસે ઘટપટા દી પૃથ્વી જલવાયા પદાર્થ પણ એમાં પટ્ટો અર્થ સીધો નથી કરે. આદિ આદિ એટલે બીજા પણ પદાર્થો, જળ પદાર્થો બીજા એમ લેવા, એમ કેવું છે? પણ પ્રશ્ન એટલો છે કે પટનો અર્થ શું કરવો આપણે? મેં તો છે શબ્દકોષ તો છે બધા. હા, સાથે તો વસ્ત્ર થાય, મારો એક ખ્યાલ છે. અમારાથી શબ્દકોશ આપણે અંદર હશે. ભાષામાં એક શબ્દ કે અનેક અર્થ હોતે હોતે હૈ. જૈસે પાણી, તો પાણી કા અર્થ જલ ભી હોતા હૈ, પર પાણી કા અર્થ પર હાથ ભી હોતા હૈ. પાણી ગ્રહણ નથી કહેતા, લગ્ન થાય છે તો પાણી ગ્રહણ કર્યું, પાણી ગ્રહણ કર્યું એટલે હાથ પકડ્યો, કન્યાનો હાથ પકડ્યો. પાણી એટલે જળ, પાણી એટલે હાથ, બે થાય. એક પાણી પાણીના અગરવડ કેટલા મળે છે? સંસ્કૃતમાં 20 જેટલા છે. નીર ને પાણી કહે છે, જળ ને પાણી કહે છે, પાણી ને પાણી કહે છે. પટ્ટો ઉપર પટ્ટો, પટ એ ગાર્મેન્ટ. પટ વેસ્ટ ને કે કરણે કરણે ઘર ને એ ગાર્મેન્ટ, રાયામેન્ટ ક્લોથ એટલે ક્લોથ, એ પીસ ઓફ ક્લોથ. ફાઇન ક્લોથ, સ્ક્રીન પડદા, એ ટેબ્લેટ, પ્લેટ ઓફ પીસ ઓફ ક્લોથ ફોર રાઇટિંગ અપ પેઇન્ટિંગ અપોન, ચિત્ર કરને કે લીએ. અંચળ, આંચળ એ હેમ ઓફ ગાર્મેન્ટ. વીવર, પેઇન્ટર. મુખ્ય અર્થ વસ્ત્ર લીયા હૈ, ગાર્મેન્ટ એન્ડ ક્લોથ, ફાઇન ક્લોથ એસા કરતે લીએ. બાકી તો ફિર ઉસકે જો લગતે હૈ, પીછે જો લગે, આગે પીછે કોઈ લગતા હૈ, ઇસકા અર્થ ક્યા હૈ? પટ મય, મેડ ઓફ ક્લોથ. નીચે પટ મય શબ્દ કા અર્થ ક્યા હૈ? મેડ ઓફ ક્લોથ યાને ટેન્ટ. પટક, કોટન ક્લોથ. વસ્ત્ર છે મુખ્ય અર્થ. સંસ્કૃત ઇંગ્લિશ ડિક્શનરી વસ્ત્ર કર્યો છે. સમયસરમાં પણ વસ્ત્ર અર્થ કર્યો છે. આત્મા એક રૂપ છે, સ્થિતિ કરકે ત્રિકાળ રહ સકતા હૈ. મને અભી એસી સ્થિતિ કરે તો ત્રિકા રહે સકતા હૈ, એક રૂપ અભી નહીં રહેતા હૈ. અભી તો અવસ્થા સે અવસ્થાંતર હો જાતા હૈ. કભી મનુષ્ય હોતા હૈ, કભી તિર્યંચ હોતા હૈ, ચાર ગતિ મેં ચાર ગતિ કી અવસ્થા ધારણ કરતા હૈ. દેવ મનુષ્ય તિર્યંચ ધાર કે, લેકિન એક રૂપ અવસ્થા કરકે ત્રિકા રહે સકતા હૈ મોક્ષમાં. મોક્ષમાં તો અવસ્થા બદલતા હૈ, એ વાત ઇધર નહીં ક્યા. તો એક રૂપ રહે સકતા હૈ, વો બાત ક્યા પ્રતિપાદન કરને મેં ક્યા વિશિક્ષણતા હૈ. એસા નિત્ય પદાર્થ હૈ, જિસ પદાર્થ કી ઉત્પત્તિ કિસી ભી સંયોગ સે નહીં હો સકતી, વો પદાર્થ નિત્ય હોતા હૈ. વો પદાર્થ નિત્ય હોતા હૈ, જિસકી ઉત્પત્તિ નહીં હો તો નિત્ય હોતા હૈ, ક્યોંકિ અનાદિ સે હૈ. તો નહી ઉત્પત્તિ હો તો તો અનિત્ય હો જાતા હૈ, ઓર ઉત્પત્તિ નહી હુઈ તો નિત્ય રહા. आत्मा किसी भी संयोग से बन सके ऐसा प्रतीत नहीं होता। आत्मा को कोई बना नहीं सकता, जैसे वस्त्र को बनाता है लेकिन आत्मा को बना सकता नहीं है, घड़े को बनाता है आत्मा को बना सकता नहीं है, ऐसा प्रतीत नहीं होता, ऐसा विश्वास नहीं आता कि आत्मा को कोई बना सकता है। बातें तो होगी लेकिन बना सकता नहीं है, क्योंकि जड़ के चाहे हजारों संयोग करें तो भी उससे चेतन की उत्पत्ति हो सकने योग्य नहीं है। बहुत गांधी जी को अच्छा उत्तर दिया है कि जड़ परमाणु की हजारों प्रकार की स्थिति बनाओ आप, इसमें चैतन्य की उत्पत्ति होने वाली नहीं है। जड़ जड़ ही रहेगा, चैतन्य चैतन्य ही रहेगा, जड़ से चैतन्य की उत्पत्ति हो सकती नहीं है। हाँ, ये मिथ्या मान्यता है। क्या
मिथ्या मान्यता है?
आत्मा पंचभूत का बना हुआ है, वो मिथ्या मान्यता है। वो शरीर पंचभूत का बना हुआ है, वो बिखर जाता है। आत्मा तो वैसा का वैसा आत्मा ही रहता है। ना आत्मा पंच महाभूत का बना हुआ है, महाभूत कहते हैं, भूत नहीं कहते हैं, बड़े भूत कहते हैं। भूत मैंने वो भूत नहीं, भूत मैंने ये व्यंतर योनि वाली बात नहीं है, भूत मैंने होना, वो भाव टू बी, पांच प्रकार का तत्व का बना हुआ आत्मा है, ऐसी बात
नहीं है।
नहीं है, न पंच महाभूत का बना हुआ है, न अष्टकर्म से भी बना हुआ है। ये होता है ना खटिया, खटिया खटिया में क्या होता है, आठ पीस होता है, चार उसके पाए होते हैं और चार उसके ऊपर लगाए हुए हैं, और उसमें कोई आदमी सोता है। वैसे आठ कर्म का खटिया में आत्मा सोता है क्या है? ऐसा भी आत्मा
नहीं,
नहीं है, खटिया है तो खा लो, अपने गुजराती में खा लो। क्योंकि जड़ के चाहे हजारों संयोग करें तो भी उससे चेतन की उत्पत्ति हो सकने योग्य नहीं है। जो धर्म जिस पदार्थ में नहीं होता, वैसे बहुत से पदार्थों को इकट्ठा करके भी उसमें जो धर्म नहीं है वो उत्पन्न नहीं हो सकता, ऐसा अनुभव सबको हो सकता है। जिस पदार्थ में जिस धर्म नहीं है उसमें ऐसा धर्म उत्पन्न नहीं किया जा सकता। बहुत से ऐसे पदार्थ तो करें, जैसे परमाणु में चेतन नहीं है तो अनेक प्रकार के परमाणु किसी भी प्रकार से इकट्ठा करके मिलावट करें या प्रोसेस करें, इकट्ठा करने का मतलब क्या है, कुछ भी प्रोसेस करें करें परमाणु का, परमाणु में चैतन्य पड़ा उत्पन्न होगा
नहीं,
नहीं। ऐसा सबको अनुभव हो सकता है, ऐसा सबको अनुभव हो सकता है। ये आजकल हार्ट बनाते हैं, क्या बनाते हैं, प्लास्टिक का हार्ट बनाते हैं, तो प्लास्टिक का हार्ट जो है वो ये हार्ट को निकाल करके वहां फिट कर देते हैं, पर फिर वो आदमी जिंदा रहता है और हार्ट भी चालू हो जाता है। तो हार्ट से चेतन पड़ा लाया गया क्या नहीं लाया गया?
नहीं,
नहीं। क्यों? तो अगर लाया जाता तो इधर फिट किए भी नहीं चालू करो ना, है? नहीं हो सकता,
नहीं है।
जड़ में चेतन पड़ा तभी हो सकता
नहीं, नहीं है,
है? क्या ये बड़ा मौजूद है, फिर उसका हाथ पर नहीं होना चाहिए, है? उसका हाथ हमेशा चालू रहे तो मरे ही नहीं, लेकिन वो भी मरता है, वो चेतन को पकड़ सकता नहीं, रख सकता नहीं, और चेतन रूप हो सकता भी नहीं है। ऐसा अनुभव सबको हो सकता है, जो घटपटादि पदार्थ है उनमें ज्ञान स्वरूपता देखने में नहीं आती, उसमें ज्ञानपना नहीं है, ज्ञान स्वरूपता उसमें नहीं है। वैसे पदार्थों का परिमांतर करके संयोग किया हो अथवा हुआ हो तो भी वह उसी जाति का होता है, अर्थात जड़ स्वरूप होता है परंतु ज्ञान स्वरूप नहीं होता। जड़ पदार्थ का परिणामांतर करके उसकी पर्याय बदल करके यानी कुछ भी प्रोसेस करके कुछ भी किया जाए तो भी वो परिणाम जो होगा वो जड़ जाति का ही होगा, जड़ से विशेष कुछ होगा नहीं, या थोड़ा भी चेतन उसके में आ सकता है ऐसा बन सकता नहीं है, यानी वो ज्ञान स्वरूप हो सकता नहीं है। ये भी रोबोट ज्ञान स्वरूप होता है कि नहीं होता है? नहीं। और ये कंप्यूटर वो भी नहीं होता है, उसको चलाने के लिए चेतन जाय चाहिए, वो अपने आप कुछ कर सकता नहीं है। कंप्यूटर काम तो बहुत करता है लेकिन फीडिंग करे तो ना, है फीडिंग नहीं करो तो क्या करेगा? मतलब चेतन चेतन है, जड़ जड़ है, किसी भी अवस्था में रूपांतर हो जाए तो भी जड़ का चेतन पड़ा हो सकता नहीं है। कंप्यूटर में ज्ञान आएगा क्या नहीं आएगा? आपका सवाल का उत्तर तो देता है, है? फिर भी उसमें ज्ञान नहीं है, सो नहीं है, पक्के बात है। परिणामांतर करके उसी जाति का रहता है, जड़ स्वरूप होता है परंतु ज्ञान स्वरूप नहीं होता, तो फिर वैसे पदार्थों का संयोग होने पर आत्मा के लिए आत्मा के जिसे ज्ञानी पुरुष मुख्य ज्ञान स्वरूप लक्षण वाला कहता है वह वैसे घटपटादि पदार्थों से किसी तरह उत्पन्न हो सकने योग्य नहीं है। अभी बात सिद्धांत पर दिया दृष्टांत से, तो उस तरह से जड़ पदार्थों का वैसे मैंने जड़ पदार्थों का संयोग होने पर तो किसी तरह से उसमें जीव का या आत्मा का पैदा होना बन सकता नहीं है कि जो आत्मा मुख्य रूप से ज्ञान लक्षण वाला कहा है, आत्मा ने कहा ज्ञान लक्षण वाला कहा, क्योंकि अंतर क्या है जड़ चेतन में? जड़ में ज्ञान नहीं है, चेतन में ज्ञान है, भले वो चेतन का शरीर चीटी जितना बारीक हो लेकिन उसमें ज्ञान है, और जड़ कितना भी बड़ा हो उसमें कोई ज्ञान नहीं है, खड़ा पूरा पूरा पर्वत पर्वत हो खड़ा कोई ज्ञान उसमें नहीं है। इस तरह से ज्ञान से दोनों अलग पड़ते हैं, किससे अलग पड़ते हैं? जड़ चेतन ज्ञान से अलग पड़ते हैं, ये मुख्य बात पाया की बात है। इधर विशेष कहेंगे।